हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी से मिलने के बाद विधिक वापस अपने घर पर पहुँचा। उसके वहाँ आने पर मैनेजर ने उसे दीप्ति और मेंटेनेंस के लिए आए आदमी के बारे में बता दिया था। काफी दिनों से विधिक लावण्या के कॉन्टैक्ट में नहीं था। अचानक दीप्ति के वहाँ आने का पता चला तो विधिक की हैरानी हुई। मैनेजर की बात सुनकर विधिक का ध्यान टूटा। मैनेजर ने विधिक से कहा, मुझे उन दोनों में कुछ गड़बड़ नहीं लगी सर, लेकिन फिर भी आप एक बार घर चेक कर लीजिएगा। विधिक ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और तेज कदमों से चलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। विधिक ने ऊपर जाते हुए खुद से कहा, आई होप मेरे पीछे से नकली शिवांगी ने सब कुछ हैंडल कर लिया होगा। वैसे भी वो काफी चालाक औरत है, तो मुझे नहीं लगता कि दीप्ति जैसी सीधी साधी लड़की उसे धोखा दे पाई होगी। अपनी उधेड़बुन में खोए हुए विधिक ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, जमीन पर खून बिखरा हुआ था और दिव्याना की लाश पड़ी थी। दिव्याना की लाश देखकर विधिक के चेहरे पर दुख के बजाय हल्की स्माइल थी। तो तुम आखिर तक मुझे झूठ बोलती रही। उस लड़की दीप्ति को तुम जानती थी और वो भी एक सीक्रेट एजेंट निकली। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मौत हुई है तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, विधिक ने सिर हिला कहा। विधिक ने कुछ पल दिव्याना की लाश को देखा और फिर कहा, जो भी हो, काफी बेरहमी से मारा है उसने तुम्हें। अगर ये काम मिस्टर कपूर ने किया है तो मानना पड़ेगा, बंदा काफी टफ है। अपने ही प्यार को मार डाला। आई होप बटरफ्लाई को सच पता चले और उसे भी तो पता चले कि वो अब जिस इंसान के साथ रह रही है वो भी कोई संत नहीं है। दिव्याना की लाश देखने के बाद विधिक मिस्टर जिंदल को देखने उनके कमरे की तरफ बढ़ा। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी मिस्टर जिंदल वहां नहीं होंगे। विधिक कमरे में गया तो रस्सियां खुली हुई थीं और मिस्टर जिंदल वाकई वहां नहीं थे। विधिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, उसे मारना था तो मार देते, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे ससुर जी को तो यहीं छोड़ देते। लेकिन नहीं, तुम्हें हीरो बनना था मेरी बटरफ्लाई के आगे। वॉट एवर, कुछ भी कर लो, वो मेरी है और मेरे पास आकर रहेगी। अमन कपूर, जो किया सो किया, इस लड़की की लाश यहाँ नहीं छोड़नी थी, अब इसे भी मुझे ही साफ करना पड़ेगा। चलो, अब तुमने इसे यहाँ छोड़ दिया है तो सबको सरप्राइज दिया जाए। बातें करते हुए अमन ने शाहिद को कॉल मिलाया और कहा, एक डेड बॉडी को सीक्रेट एजेंसी ऑफिस पहुँचाना है, जल्दी से यहाँ आओ और उसका इंतजाम करो, कहकर विधिक ने कॉल कट कर दिया। विधिक को दिव्याना की मौत से इतना फर्क नहीं पड़ा था जितना अमन के मिस्टर जिंदल को वहां से ले जाने से पड़ा था। इसका बदला लेने के लिए अब विधिक कुछ ऐसा पागलपन करने जा रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। दिव्याना को मारने के गिल्ट में अमन क्लब में बैठा हुआ था। बार बार उसकी आंखों के सामने दिव्याना के साथ बिताए लम्हे घूम रहे थे तो कभी उसकी आंखों के सामने जमीन पर पड़ी दिव्याना की लाश का चेहरा आ जाता। सब कुछ भुलाने के लिए अमन लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। अमन ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, मुझे उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। कितनी बार समझाया दीवी तुम्हें कि जिद में आकर बेवकूफी मत किया करो, लेकिन तुम हमेशा खुद को प्रायोरिटी देती रही और तुम्हारी इसी आदत के चलते तुमने विधिक राणा जैसे इंसान का साथ दिया। रात के 11 बज गए थे, फिर भी अमन क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। जब उसे लगने लगा कि उसने और ज्यादा पी तो उसके लिए घर जाना मुश्किल हो जाएगा, तब अमन वहां से घर जाने के लिए निकल गया। वही अमन अब तक घर नहीं आया तो आंशी को स्ट्रेस होने लगा। उसने अमन के मना करने के बावजूद अपना मोबाइल ऑन किया। वो अमन को कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। लगता है अमन आ गया है, पहले ही कॉल करके बता देता कि आने में देर हो जाएगी, आंशी ने खुद से कहा। उसने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं की थी क्योंकि आंशी उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो अमन को ये दिखाना चाहती थी। अमन के आते ही आंशी एक्साइटेड होकर उसके पास गई। उसके पास जाते ही उसे महसूस हो गया कि अमन ने ड्रिंक कर रखी है। वही अमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। अमन गिरने ही वाला था कि आंशी ने उसे थाम लिया और गिरने से बचा लिया। आंशी ने अमन को पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम भी ड्रिंक करते हो। बोलते हुए उसकी नज़र अमन की आंखों में गई जिसमें आंसू थे। आंशी कुछ पूछ पाती उससे पहले अमन ने उसे गले लगा दिया। अमन ने रोते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा पहला प्यार थी, मैंने उसे अपना सब कुछ दिया, पर उसने पहले भी मुझे धोखा दे दिया और अब भी, उसने ऐसा क्यों किया? उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। आंशी, उसको इतना कुछ करने के बावजूद मैं उससे नफरत नहीं कर पाया, लेकिन देखो ना, आज मुझे उसे मारना पड़ा। अमन किस बारे में बात कर रहा था, आंशी को वो तो समझ नहीं आया, लेकिन वो ये जरूर समझ पाई कि आज अमन ने किसी को मारा है और वो शख्स उसके लिए बहुत खास थी, तभी वो इतना परेशान है। क्या ये सब विधिक की वजह से हुआ है, आंशी ने मासूमियत से पूछा। अमन ने आंशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आंशी से अलग हुआ और उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मुझे उसे याद नहीं करना है, वो मेरा पास्ट थी और मैंने उसे मार दिया। वो एक धोखेबाज थी, पहले उसने मुझे धोखा दिया और फिर हमारे देश को भी धोखा दिया। वो मरना डिजर्व करती थी, पर मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भूल जाओगे, आंशी ने अमन का सिर सहलाते हुए कहा और फिर उसे कमरे में ले जाने लगी। लेकिन नहीं भूल पा रहा ना, इतनी पीने के बाद भी उसी का चेहरा याद आ रहा है, मुझे उसे याद नहीं करना है। आंशी, आई वॉन्ट टू फॉरगेट हर, अमन ने जवाब दिया। वो किसी बच्चे की तरह बात कर रहा था। आंशी के ब्रोकन होने पर हमेशा अमन ही आंशी को संभालता था। आज अमन आंशी के सामने रो रहा था। आंशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमन को कैसे संभाले। अमन के आने पर आंशी ने काफी कुछ करने का सोचा था, पर उसकी हालत देखकर अब उसे बहुत दुख महसूस हो रहा था। आंशी उसे बेड पर लेकर आई और बैठा दिया। आंशी भी उसके पास आकर बैठ गई। उसने अमन का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम इस तरह टूट नहीं सकते, तुम्हारी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, तुम नशे में हो वरना तुमसे। आंशी बोल रही थी तभी अमन ने अपने होंठ आंशी के होठों पर रख दिए। आंशी ने लगा अमन अपने गम से निकलने के लिए ये सब कर रहा था, जबकि सच्चाई ये थी अमन इस वक्त अपने होश में नहीं था। अमन आंशी को काफी वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। आंशी को उससे तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तभी किस करते हुए अमन के हाथ आंशी की बैग पर गया और उसने उसके ब्लाउज की डोरी खोली। आंशी जल्दी से अमन से दूर हुई और कहा, नहीं अमन, ट्रस्ट मी, मैंने इस लम्हे का तुमसे कहीं ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया है, पर तुम होश में नहीं हो, तुम्हें तो ये तक याद नहीं है मैं कौन हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें नम होने लगीं। तुम आंशी जिंदल हो, मेरी वाइफ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, अमन ने पलके झपकाकर जवाब दिया। आंशी ने आगे कुछ नहीं कहा, हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उसने अमन के होठों को कैप्चर किया और उसे किस करने लगी। ना चाहते हुए भी आंशी के कानों में विधिक की आवाज गूंज रही थी। जब विधिक ने उसे कहा था, याद रखना बटरफ्लाई, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा किसी और को तुम्हें छूने का हक नहीं है, तुम उसके पास जा तो रही हो लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी होगी, मेरे लिए, हमारे लिए।
उस लम्हे में आंशी सब भूल गई। उसे याद था तो सिर्फ इतना कि वो अमन से प्यार करती है। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े रूम के फ्लोर पर बिखरे पड़े थे और अमन और आंशी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। नशे में ही सही, लेकिन अमन और आंशी के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। अगली सुबह अमन की आंख खुली तो वो आंशी के साथ उसकी साड़ी में उलझकर सोया हुआ था। अमन ने अपने सर पर हाथ लगाया तो उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। फिर उसकी नज़र आंशी और खुद पर गई। उन दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। उन दोनों को उस तरह देखकर अमन समझ गया कि कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। अमन ने सिर पकड़कर बड़बड़ाते हुए कहा, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी क्रूशल सिचुएशन में, मुझे लवी को दिव्याना के बारे में बताना था और मैं यहाँ आंशी के साथ। बोलते हुए अमन ने आंशी की तरफ देखा जो काफी गहरी नींद में लग रही थी। एक बात तो साफ थी कि अगर अमन होश में होता तो ऐसे टाइम में ये गलती बिल्कुल नहीं करता। इस वक्त उसका एजेंसी जाना बहुत जरूरी था तो वो तैयार होने के लिए बाथरूम में घुसा। जाने से पहले अमन ने आंशी के लिए एक नोट छोड़ा और उसे फ्रिज पर चिपका दिया। अमन के जाने के लगभग दो घंटे बाद आंशी नींद से उठी। उसने देखा अमन उसके पास नहीं था। आंशी समझ गई थी कि अमन एजेंसी या ऑफिस जा चुका होगा। अमन के वहाँ ना होने के बावजूद आंशी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आंशी ने खुद को गले लगा लिया। वो आंख बंद करके अमन को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। आंशी ने बंद आंखों से ही कहा, तो आखिर मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। नशे में ही सही, तुमने हमारे बीच की सारी दुनिया मिटा दी। आई लव यू सो मच अमन। आंशी ने खुद को ब्लैंकेट में लपेटा और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। आंशी को चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अमन अब पूरी तरह उसका हो चुका था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई तो उसकी नज़र फ्रिज पर लगे नोट पर गई। अमन जब भी बाहर जाता था तो आंशी के लिए नोट छोड़कर जाता था। नोट देखकर आंशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक्साइटेड होकर नोट पढ़ने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने वो नोट पढ़ा, आंशी का चेहरा उतर गया और आंखों में आंसू थे। गलती? तो क्या कल रात जो हुआ, मेरे इमोशंस, तुम्हारा प्यार, सब कुछ एक गलती थे? आंशी ने रोते हुए कहा और नोट फाड़कर फेंक दिया। ये बात तो तय थी कि नोट में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद आंशी के चेहरे की मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई। खैर।